परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम मत्ती की पुस्तक के 24 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु यीशु शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो संसार के या युग के अंत के विषय में है और क्लेश के आरंभ होने का चिन्ह जिसे यीशु इस अध्याय में हमें बताते हैं। आज हम अपने अध्ययन को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 15 पद से आरंभ करेंगे जिसमें हम महान क्लेश के साथ समस्या और दुख को देखते हैं। अब यीशु चिन्ह को बताते अर्थात देते हैं जो इस समय काल को पहचानेगी। हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 15 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। मित्रों, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है? ठीक है, दानियल हमें उनमें से दो के बारे में बताते हैं। उनमें से एक अंतोगस इफिफानस था जो सीरिया का था और यरूशलेम में आकर उसने यरूशलेम को नाश कर दिया। दानियल उसके 11 अध्याय और उसके 31 पद में हम इसे पढ़ते हैं, और उसकी सेना उठकर पवित्र स्थान के गढ़ को अपवित्र करेगी और नियमित होम बलि को समाप्त कर देगी और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी। मित्रों, इतिहास इस बात को मानता है कि अंतियोकस इपिफानस 170 बीसी में यरूशलेम के विरोध में आया और उस समय लगभग 100,000 से भी अधिक यहूदी मारे गए। उसने मंदिर से प्रतिदिन के बलिदान को हटा दिया और उसने सुअर के मांसरस और लहू को वेदी पर चढ़ाया और वेदी पर ज्यूपिटर देवता की मूर्ति बैठा दी ताकि पवित्र स्थान में उसकी उपासना हो। जो भी हो, हमारे प्रभु निस्संदेह दूसरे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का जिक्र करते हैं जिसका संकेत दानियल करता है। देखें दानियल 12 अध्याय उसके 11 पद में, और मैं विश्वास करता हूं कि यह मसीही विरोधी की एक मूर्ति होगी जिसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा। क्लेश के समय में मंदिर फिर से बनाया जाएगा और इसराइल राष्ट्र फिर से पलिस्तीन में वापस आएगा। स्पष्ट रूप से प्रभु मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, इससे बढ़कर न कि कलीसिया की, क्योंकि कलीसिया में कोई पवित्र स्थान नहीं है। जो कुछ भी हो, हम निश्चित नहीं हो सकते हैं कि इसी उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे प्रभु संकेत कर रहे हैं जो पिछले परिच्छेद हमारे सामने है, यह सिर्फ हमारा अनुमान है। मैं उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को नहीं देख रहा हूं। यदि मैं उसे रास्ते में देखूं तो नहीं पहचानूंगा, परंतु अंतिम युग के लोग उसको ढूंढेंगे क्योंकि यह उनके लिए एक चिन्ह होगा जो यह प्रमाणित करेगा कि यह महासंकट काल का समय है अर्थात क्लेश के समय में। मसीही विरोधी और उजाड़ने वाली वस्तु को हमें देखने या इंतजार करने के बदले में हमें कहा गया है, जिसे हम तीतुस 2 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें। मित्रों, हमारे प्रभु कहते हैं कि जो कोई इसे पढ़ता है अर्थात पाठक इसे समझ ले, जिसका मतलब है कि जो लोग उस समय जीवित रहेंगे इस बात को समझेंगे जबकि मैं और आप वहां पर नहीं होंगे। उसने हमें अधिक विवरण नहीं दिया है, फिर भी अब हमें दूसरा समय या शब्द दिया गया है जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु प्रकट या उपस्थित होगी। तब क्या होगा? हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 16 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। मित्रों, मैं और आप यहूदिया के पहाड़ पर भागने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे घर के नजदीक कोई बम गिरता है तो निश्चित रूप से हम मारे जाएंगे, परंतु वह इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं करेगा। वास्तव में इसका उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि यहूदिया में रहने वालों के साथ संबंध है। हमारे प्रभु यह भविष्यवाणी उन लोगों के लिए दे रहे हैं, न कि हम लोगों के लिए। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 17 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। मित्रों, फलिस्तीन में घर का छत हमारे सामने के आंगन या हमारे आंगन के सदृश है। मैं फिर से इस पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे प्रभु फलिस्तीन के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आपके लिए और मेरे लिए नहीं। यह चेतावनी हमारे लिए लागू नहीं होती है। हम अपना समय घर के छत पर नहीं बिताते हैं। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मित्रों, यह उन लोगों का उल्लेख करता है जो कृषि कार्य से जुड़े हैं। यदि एक मजदूर सुबह पाव फटने से पहले अपने वस्त्र को खेत में या आखिरी बार छोड़ता है और पुकार होती है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु प्रकट हुई है, तब उसे वापस जाकर अपने वस्त्र को लाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे दौड़ना अर्थात भागना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो बच जाए। हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। मित्रों, यह प्रकट करता है कि उसे माता और बच्चों के लिए कितना ध्यान है। वो एक ऐसा समय होगा कि किसी के पास बच्चे नहीं होंगे तो अच्छा ही होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महान क्लेश के आरंभ में जनसंख्या की बहुत बढ़ोतरी होगी। सत्य यह है कि अभी हमारे दिनों में पृथ्वी लोगों के भार से और अधिक भारी होती जा रही है। हो सकता है कि यह युग के अंत के पास है, और इस बात का यह दूसरा प्रमाण है। हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 20 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े। फिर से ये वे लोग हैं जो सप्त का दिन मानते हैं, जो शनिवार का दिन है। यह एक दूसरा प्रमाण है कि मसीह सीधे यहूदी लोगों से बात कर रहे हैं। मैं सप्त के दिन कलीसिया में नहीं जाता हूं, परंतु रविवार को जाता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु इस दिन मृतकों में से जी उठा। हम मत्ती उसके 24 अध्याय के 21 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होगा। मित्रों, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 14 पद में हूबहू अनुवाद है, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। मित्रों, दोनों संज्ञा और विश्लेषण के पहले उपपद को रखा गया ताकि उसको महत्व दिया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें कि क्लेश अनोखा है, संसार के इतिहास में इसके जैसा कुछ भी ऐसा नहीं है और न इसके जैसा कभी हो सकता है या हो सकेगा। और आप ध्यान दीजिए कि हमारे प्रभु ही एक हैं जो इस युग के अंत को महाक्लेश की मुहर लगाते हैं। यदि आप इसमें कोई गलती पाते हैं तो मुझसे नहीं, उसी से बात कीजिए। जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। जबकि यह सच है तो मेरा विश्वास कीजिए कि लोग इसे जान लेंगे जब वह यहां पर होगा। आजकल मैं लोगों को बात करते सुनता हूं कि कलीसिया क्लेश में से होकर जाएगी, परंतु वे इस बात को नहीं जानते हैं कि यह क्लेश का समय कितना भयानक होगा। यहां तक कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम इस प्रार्थना समय में महाक्लेश में हैं। यह सच है कि हमारे दिनों में सब कुछ ठीक नहीं है और दिन बुरे हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। परंतु इस समय कलीसिया की तुलना इतिहास के अन्य समयों के साथ नहीं की जा सकती है। जब महाक्लेश यहां पर आएगा तो उस समय भूतकाल या भविष्यकाल से तुलना करने के योग्य कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वैसा ना तो हुआ है और ना कभी होगा। हम मत्ती 24 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मित्रों, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं कि महाक्लेश के समय पृथ्वी के एक तिहाई लोग नाश किए जाएंगे और एक दूसरे अवसर पर पृथ्वी के एक चौथाई लोग नाश किए जाएंगे, यह पूर्ण रूप से अनूठा है। हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय में एक उपमा दिया गया है कि युद्ध का लाल घोड़ा, अकाल का काला घोड़ा और मृत्यु का हल्का पीले रंग का घोड़ा था। जो उस समय सवारी करेगा और पृथ्वी की जनसंख्या मार डाली जाएगी। इस समय था जब अतिशयोक्ति लगता था। यहाँ तक कि कुछ अच्छे व्याख्याकर्ता भी अतिशयोक्ति मानते हैं। जो भी हो, अब बहुत से देश हैं जिनके पास अणुबम है जो संसार की जनसंख्या को नाश कर सकते हैं, और अब यह असंभव नहीं लगती है। जो भी हो, इस पद में सांत्वना भी है। लिखा है, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। परमेश्वर मनुष्य जाति को कभी भी आत्महत्या नहीं करने देंगे। यही कारण है कि यह थोड़े समय के लिए ही होगा। यीशु अपने दोबारा आने के बारे में उन्हें भरोसा दिलाते हैं। अब हम उसके आने के चिन्ह के बारे में देखेंगे कि उसके आने की क्या बात है। मत्तयी सुसमाचार 24 अध्याय उसके 23 से 25 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, उस समय यदि कोई तुम में से कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले ही तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। मित्रों, वह वहां पर जो कह रहा है उसे आप कृपा करके न चुकें। हमारे दिनों में चमत्कार करने की क्षमता को संदेह के साथ देखना चाहिए, क्योंकि अगला महान चमत्कार के कार्य करने वाला मसीह नहीं होगा, परंतु वह मसीही विरोधी हो सकता है और झूठे भविष्यवक्ता हो सकते हैं। यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दें। चुने हुए लोग कौन हैं? पवित्र शास्त्र में दो चुने हुए समूह या दल हैं, इसराइल राष्ट्र से चुने हुए और कलीसिया से चुने हुए। हमें अपने सही विवेक का प्रयोग करना है और निर्णय लेना है कि किस समूह के लिए कहा गया है। इस समय तक हमारे प्रभु किसके बारे में बातें कर रहे थे? इसराइल के बारे में। बिल्कुल सही, इस पद में इसराइल ही चुना हुआ है और यीशु कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप कभी कभी किसी व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर के संतानों को सब समय मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता है। मैंने बहुत से पत्रों को पढ़ा है जो इसकी गवाही देते हैं। एक महिला का पत्र मिला जो बहुत समय पहले ही गलत शिक्षा से बाहर निकलकर आई थी। उसने हमारे रेडियो कार्यक्रम को कुछ महीने पहले सुनना आरंभ किया और वह गलत शिक्षकों की शिक्षा को इस अध्ययन के माध्यम से देख सकती थी कि परमेश्वर की संतानों को हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। वे अंत तक गलत शिक्षा से बाहर निकल ही जाएंगे। तो मित्रों, हम मत्तयी सुसमाचार 24 अध्याय उसके 26 और 27 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठियों में है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जब वह आएगा तो उस समय कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी घोषणा करने के लिए नहीं होगा, परंतु जब वह आएगा तो संपूर्ण विश्व जानेगा। जिस प्रकार बिजली चमकने पर सारे लोग उसे देख सकते हैं, उसी प्रकार से सबको दिखेगा। आप में से जो लोग मध्य पश्चिम में रहते हैं जानते हैं कि तूफान के साथ बिजली का चमकना सब लोगों को पता चलता है। जब यह होगा तो प्रत्येक इसके बारे में जानेंगे। इस पृथ्वी पर प्रभु का दूसरा आगमन भी ऐसा ही होगा। किसी को घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हमारे प्रभु दूसरी बार इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएंगे, तो प्रत्येक जानेंगे कि वह आ रहे हैं। इस बात को याद रखें कि उनका पृथ्वी पर दूसरा आगमन पृथ्वी पर से उठा लिए जाने का संकेत नहीं देता है। हम मत्तयी सुसमाचार 24 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। मित्रों, इस संपूर्ण जैतून के उपदेश में से यही एक पद है जिसे समझना सबसे अधिक कठिन है। महिमा के साथ अपने आने के बारे में कहने के बाद, जैसे कि बिजली का आकाश में चमकना, उसके बाद पक्षियों का सड़े गले मांस को खाना, इसके बारे में बात करना अजीब सा लगता है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि वह मसीह के न्याय के रूप में आने की बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19 अध्याय में हमें एक निमंत्रण के बारे में बताया गया है जो चिड़ियों के लिए था, कि वे एक साथ एक बड़े दावत के लिए आएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 17 पद से लेकर के 19 पद में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़े देखा। उसने आकाश के मध्य उड़ने वाले सब पक्षियों से ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए एकत्रित हो जाओ, कि तुम राजाओं, सेनापतियों और शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों और उनके सवारों का मांस तथा स्वतंत्र और दासों, छोटों व बड़ों सब मनुष्यों का मांस खा सको। फिर मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को एकत्रित होते देखा कि उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करें। मित्रों, पक्षी जो मांस खाते हैं ऐसा लगता है कि ईश्वरीय न्याय के दलाल हैं। जब प्रभु दोबारा आते हैं तो वह न्याय के लिए आएंगे। हम मत्ती उसके 24 अध्याय और 29 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मित्रों, ध्यान दें कि यह होगा उन दिनों के क्लेश के तुरंत पश्चात। मेरा यह मानना है कि ये सब कुछ मसीह की पृथ्वी पर दूसरे आगमन के समय होगा। मत्ती 24 अध्याय उसके 30 पद में आगे लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। वो चिन्ह क्या होगा, अर्थात क्या है? फिर से मुझे सोचना या चिंतन करना होगा। क्या आपको याद है पुराने नियम में इसराइल राष्ट्र को महिमा दी गई थी? शकेना, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, किसी दूसरे राष्ट्र या लोगों को यह सौभाग्य नहीं दिया गया था और न ही कलीसिया के पास यह है। परमेश्वर की उपस्थिति तंबू में थी और बाद में यरूशलेम मंदिर में, परंतु इसराइलियों के पाप के कारण परमेश्वर की शकेना महिमा ने राष्ट्र को छोड़ दिया। जब मसीह पहली बार आए तो उसने अपने ईश्वरत्व को एक तरफ नहीं रख दिया, परंतु अपने ईश्वरत्व के परमाधिकार को एक तरफ रखा। यद्यपि यूहन्ना उसकी महिमा के विषय में कहता है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 पद में, समयों पर वो प्रकट भी हुई। उसके दूसरे आगमन में, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा उसके पृथ्वी पर आने से पहले पृथ्वी पर मंडराएगी और वो आकाश में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह भी होगा। लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ तथा बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यह पृथ्वी पर उसका फिर से आना होगा अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 31 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मित्रों, इस पद में चुने हुए लोग जिनके विषय में बात की गई है वो अभी भी इसराइल राष्ट्र ही है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि एक चमत्कार इसराइलियों को फिर से उनकी भूमि में वापस लाएगा, तो यह कलीसिया नहीं है जो हवा में इस संसार से उठा ली जाएगी ताकि वह हवा में प्रभु से मिले। स्वर्गदूत ऊपर उठा ले जाने की बात से जुड़े हुए नहीं है। प्रभु तुरही की आवाज के साथ कलीसिया को लेने एक व्यक्ति के रूप में आएंगे और उसकी आवाज एक महादूत के जैसे होगी। उसे अपनी कलीसिया को एकत्र करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वह कलीसिया के लिए मरा और वह उसे एकत्रित करेगा। जब वह कहता है कि स्वर्गदूत उसके चुने हुए को एकत्र करेंगे चारों दिशाओं से, स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक, तब हमें भरोसा कर लेना चाहिए कि वह इसराइल राष्ट्र के बारे में कह रहे हैं। स्वर्गदूतों की सेवकाई हमेशा से ही इसराइल के साथ जुड़ी रही है। हम आगे देखते हैं अंजीर के पेड़ का दृष्टांत जो एक चिन्ह के रूप में है। हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 32 और 33 पद में आगे पढ़ते हैं, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मित्रों, मैं नहीं समझता कि कैसे इसराइल राष्ट्र को छोड़कर अंजीर का पेड़ किसी और को प्रस्तुत कर सकता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यर्मिया की पुस्तक 24 अध्याय और होशे 9 अध्याय और उसका 10 पद। यह निश्चित है कि इसराइल में बहुतायत से अंजीर के पेड़ बढ़ रहे हैं, हमारे दिनों में भी, जबकि उस देश के साथ बहुत कुछ हुआ है तब भी। मैं यरूशलेम के उत्तर में अंजीर की वाटिका और यरूशलेम के दक्षिण में अंगूर का वाटिका से हमेशा प्रभावित होता रहा हूँ। बेतलेहम का दक्षिण क्षेत्र अंगूर की वाटिका से भरा हुआ है और अंजीर के पेड़ और अंगूर की दाखलताएं भूमि की पहचान है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे प्रभु अंजीर के पेड़ को उस देश के लिए चिन्ह के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 34 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। मित्रों, इस पीढ़ी अर्थात यूनानी में एक शब्द का मतलब जाति हो सकता है, और यह इसराइल राष्ट्र की ओर संकेत करता है, या हो सकता है कि उसको निर्देशित करता है जो पीढ़ी उस समय रह रही होगी जब यह भविष्यवाणियां पूरी होगी। एक पीढ़ी लगभग 20 साल या 20 वर्ष तक होती है, और निश्चित रूप से इस भाग में की गई भविष्यवाणी की घटना एक कम समय में ही 20 वर्ष से कम समय से घटित हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी एक की ओर संकेत कर रही है, परंतु मैं यहूदी जाति के संरक्षण की बात को अधिक महत्व देता हूँ। न ही हमान और न फिरौन राजा यहूदियों को नाश कर पाए, और न ही हिटलर अपने कोशिशों में कामयाब हुआ, और हमारे दिनों का कोई अधिनायक भी इन लोगों को मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे संभालेंगे। हम मत्ती उसके 24 अध्याय उसके 35 पद में पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मित्रों, वो कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है तुम उसे सिर्फ रेखांकित कर सकते हो, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, वहां पर एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी, जिसे हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसकी 21 अध्याय के एक पद में देख सकते हैं, परंतु वह अपनी बात नहीं बदलेंगे। वो अनंत काल का युग होगा जो स्थिर रहेगी। हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 36 पद में आगे पढ़ते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मित्रों, यद्यपि वे जानेंगे कि यह समय निकट आ रहा है, परंतु वे दिन को नहीं जान पाएंगे और न ही समय को जानेंगे। जबकि हमारे दिनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि मसीह किस समय आएंगे। मेरा मानना है कि भविष्य के दिनों में कुछ लोग होंगे जो उसके आने के घंटे को भी बताने का प्रयत्न करेंगे, परंतु कोई भी उसके आने के दिन और न ही समय को जानेगा। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए वह नूह के उदाहरण का प्रयोग करते हैं। हम मत्ती 24 उसके 37 पद में आगे पढ़ते हैं, जैसे नूह के दिन में थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मसीह के आने का दिन नूह के दिनों के जैसा होगा। आगे हम मत्ती 24 अध्याय उसके 38 और 39 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मित्रों, अब नूह का दिन घोर भ्रष्टता के द्वारा चित्रित किया गया है। मनुष्य के हृदय का प्रत्येक विचार और कल्पनाएं केवल बुरी ही होती थी, देखें उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5 पद में। परंतु हमारे प्रभु कहते हैं कि उसके आने का दिन नूह के दिन के जैसा होगा, और वह सिर्फ इस बात का स्मरण कराते हैं कि वे खाते और पीते थे। क्या खाने और पीने में कोई गलती है? जी नहीं, हमें बताया गया है कि जो कुछ हम करते हैं, चाहे हम खाते या पीते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं, हमें कहा गया है कि हम सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 31 पद में देख सकते हैं, जो भी हो, नूह के दिनों में लोग परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं खा पी रहे थे। वास्तव में वे ऐसे जी रहे थे मानो परमेश्वर अस्तित्व में है ही नहीं। एक छोटे लड़के को उसके जीवन में पहली बार रात्रि के भोज के लिए बुलाया गया। वह घर के बगल में ही जा रहा था, परंतु उसके लिए यह एक बड़ी घटना थी। इसलिए जब उसके जाने का समय आ गया तो उसने उस घर का सीधा रास्ता लिया और वहां पहुंच गया। जब वे खाने के लिए खाने की मेज पर बैठे तो स्वतः लड़के ने अपना सिर झुका लिया कि भोजन के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, क्योंकि वह एक मसीही परिवार से आया था। अचानक से उसने ध्यान दिया कि वही अकेला है जिसने सिर झुकाया हुआ है, और बाकी लोग भोजन को एक दूसरे की तरफ आगे और पीछे बढ़ा रहे हैं। उसने अपनी आंखें खोल दी और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, क्या आप अपने भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं? कुछ क्षण के लिए शर्मिंदगी से भरे चुप्पी छा गई, और तब उस घर की महिला ने कहा, नहीं, हम नहीं देते हैं। छोटे लड़के ने कुछ क्षण के लिए सोचा और तब कहा, आप सब मेरे कुत्ते के जैसे हैं, वे जो सीधा खाना आरंभ कर देते हैं। मित्रों, हमारे दिनों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के हाथों से दिन में 3 बार भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं और वे परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और उस भविष्य के दिन में वे मसीह के आगमन के बिल्कुल समीप होंगे, पर वे ऐसे जिएंगे जैसे कि यह कभी होगा ही नहीं। नूह के दिनों में भी लोग शादी कर रहे थे और शादी करवा रहे थे। निश्चित रूप से हमारे प्रभु यह नहीं कह रहे हैं कि विवाह गलत है। उनका मुद्दा है कि उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी को, जो नूह के द्वारा से दी गई थी, पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया और वे आगे बढ़कर अपना विवाह करते रहे। हो सकता है कि यह कलीसिया की विवाह हो। उस दिन तक जब तक कि नूह जहाज में प्रवेश नहीं कर लिया, वे ऐसे ही जी रहे थे जैसे परमेश्वर है ही नहीं। उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि वह उनका न्याय करेगा और उनकी चेतावनी से घृणा की। मित्रों, जब जल प्रलय उनको बहा ना ले गया, वे इसे समझ ना सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यहाँ पर हमारा आज का अध्ययन समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ उठा रहे हैं। आज आपके लिए और मेरे लिए चेतावनी है कि क्या हम नूह के समय के लोगों की तरह उसके निमंत्रण का इनकार कर रहे हैं या उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या उसके आने पर हम उसके साथ होंगे या न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। मित्रों, आज हमारे लिए मौका है कि हम उसे अपना उद्धारकर्ता मान ले और उस भयानक दिन से जो आने वाला है बच जाएं। निर्णय आपके हाथ में है, देर न करें, आज ही फैसला लें। सहायता के लिए आप हमें पत्र लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपको सही मार्गदर्शन दे सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।